हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ये वही जगह है ना जहाँ तुम उसे दिन अकेले भी गई थी? हाँ, केन झरने के पास वही जगह है। आप चेंज कर लीजिए। वंश का सामान कमरे में पहुँच चुका था। गीत, सूटकेस, मेरे कपड़े, मेरा नाइट सूट निकाल दो। वंश की बात पर गीत ने हैरानी से देखा। ठीक है, गीत वंश का सूटकेस खोलती है। थोड़ी ही देर में वंश भी चेंज करके आ चुका था। जब वो बाथरूम से बाहर आया, गीत परेशानी की हालत में कमरे में इधर उधर देख रही थी। क्या हुआ? वंश ने उसे देखकर पूछा। मैं अपने सोने के लिए जगह देख रही थी। वंश नोटिस किया कि वहाँ पर कोई बड़ा सोफा नहीं था, सिर्फ दो वुडन चेयर्स लगी हुई थी। कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, परेशान मत हो, तुम भी चेंज कर लो। गीता भी अपने कपड़े बदलने चली गई। वंश गीत के बारे में पूछना चाहता था, क्योंकि वंश उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसके रिश्ते नाते, उसके मॉम डैड, आखिर जो उसने सोचा था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट था जो वो देख रहा था। मगर इस टाइम वो कोई बात करके अपना काम खराब नहीं करना चाहता था। वो गीत को मनाने आया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो और रूठ जाए। गीत की जिद को वो देख चुका है। सभी लोग तो मुझे जिद्दी कहते थे, मगर लगता था कि ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। वंश बेड के क्राउन से टेक लगाए कमरे की तरफ देख रहा था। एक साइड पर एक अलमारी बनी हुई थी। अलमारी के साथ ही ड्रेसिंग टेबल बना हुआ था। सामने छोटी सी LCD लगी थी। एक छोटा स्टडी टेबल था जिस पर बुक्स रखी हुई थी और कुछ गीत की फोटोग्राफ्स लगी हुई थी, जिसमें वो अपनी सहेलियों के साथ अलग अलग पोज दे रही थी। ये लड़की वो तो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। वंश के दिमाग गीत के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही थी। वंश खुश था कि कमरे में कोई बड़ा सोफा नहीं है, आएगी तो बेड पर उसी के साथ। ऐसा पहली बार था कि वो दोनों एक साथ होंगे। नींद नहीं आ रही है आपको? वंश को ऐसे बैठे देखकर गीत ने कहा। गीत, जहाँ मेरे पास आकर बैठो। गीत वंश की तरफ देखती हुई उसके पास आ गई। वंश ने उसका हाथ पकड़कर उसने उसे बिठा दिया। प्लीज गीत, मुझे माफ कर दो, वंश ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए जहाँ तक आया हूँ। माफ़ी तो मैं डिजर्व करता हूँ। तो क्या आप सिर्फ मुझसे माफ़ी मांगने के लिए जहाँ तक आए हैं? तो और किस लिए आया हूँ? अब मेरी बीवी रूठ कर बिना बताए इतनी दूर जाकर बैठ जाएगी, तो उसे मनाने के लिए पीछे तो आना पड़ेगा, वंश ने मुस्कुरा कर कहा। छोड़िए इस बात को, मैं भूल गई, वैसे अब हमें सोना चाहिए, शादी कल सुबह है, वंश ने कहा। नहीं, शादी परसों है, कल को हल्दी होगी और मेहंदी है, गीत ने बताया। आप शादी तक रुकेंगे? गीत ने पूछा। तुम कहोगी तो रुक जाऊंगा, वैसे मेरा इरादा तो तुम्हें साथ लेकर जाने का ही, तो शादी तक यहीं हूँ मैं। ठीक है, कल हल्दी है, परसों शादी है, और परसों रात को तो कोई फ्लाइट भी नहीं होगी, हम लोग शादी के अगले दिन ही जहाँ से चले जाएंगे, जैसा तुम कहो, वंश ने कहा। वंश के ऐसा कहने से गीत के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। चलो अब सो जाते हैं। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर लेटने लगे थे कि गीत के फोन पर रिंग हुई। उसका फोन वहाँ स्टडी टेबल पर पड़ा था। मेरी फ्रेंड का फोन है, मैं थोड़ी देर बात करके आती हूँ, कहते हुए गीत कमरे से बाहर निकल गई। इतनी रात को फोन कर रही हो? गीत ने उससे कहा। मैं अभी फ्री हुई हूँ काम से, घर जाते हुए तुम्हें फोन कर रही, वो कहने लगी। वो कनाडा में एक नर्स का काम करती थी, तो उसके काम करने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। अच्छा, बताओ, वंश का फोन आया क्या तुमसे माफ़ी मांगने के लिए? नहीं, गीत ने कहा। तब तुम दोनों का रिश्ता नहीं चल सकता, उसे कोई परवाह ही नहीं, तेरी पीछे एक फोन तो करना चाहिए था। कैसी माफ़ी? मेरी पूरी बात तो सुनो, वो खुद आ गया है माफ़ी मांगने के लिए, गीत ने कहा। क्या कह रही हो? सच में वो कोई तुमसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं आया है, तो और किस लिए आया है? गीत ने परेशान होकर कहा। प्यार करता है तुमसे, इसलिए आया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। तो क्या वो कमरे में ही है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं बाहर आ गई, बस अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम खत्म हुआ है, हम सोने ही लगे थे। तो अपने मियाँ को अकेले कमरे में अकेले मत छोड़, जाओ कल बात करेंगे, बस याद रखो वो तुम्हें प्यार करता है, चाहता है। वो शायद ये ना कह सके, मगर गीत, अगर जिंदगी तुम्हें प्यार इज्जत सब दे रही है, तो उसे अपनी झोली में समेट लो। जहाँ तक तुम्हारे पीछे आना, वंश जैसे लड़के के लिए, जैसा कि तुमने उसके बारे में मुझे बताया है, बिना प्यार के तो आया नहीं, तुम्हारे पीछे आकर उसने तुम्हें इज्जत भी दी है। अब कोई जिद मत करना और रिश्ते में पहल अब तुम्हें करनी है। चल, मैं फोन रखती हूँ। गीत कमरे में आती है, वंश सो रहा था,
उसने लाइट ऑफ की और नाइट बल्ब ऑन कर दिया। वो अपनी साइड पर लेट गई। वंश करवट लिए उसी की तरफ चेहरा किया सो रहा था। वो हल्की रोशनी में उसकी तरफ देखने लगी। उसके दिमाग में सिमरन की कही हुई बातें आने लगीं। वो तुम्हें चाहता है, इसीलिए तुम्हारे पीछे आया है। अगर जिंदगी खुशियाँ दे रही है तो उसे अपनी झोली में समेट लो। यही सोचते हुए वो वंश चेहरे की तरफ देखने लगी। क्या ये सच है जो सिमरन ने कहा? सोचकर उसका खुद का ही दिल धड़का था। वो इतने दिनों से वंश के साथ थी, ऐसा तो नहीं था कि उसमें कोई बुरी आदत थी। सिर्फ गुस्से को छोड़कर उसमें कोई कमी नहीं थी। जिस तरह से उन दोनों की शादी हुई, इसमें वंश का भी कोई दोष नहीं था। वंश को देखते हुए गीत के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई थी। उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया।